आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप यूपी की धरनी पर कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकले बाबा के महान रतन हैं। आपका सौभाग्य रहा बाल्यकाल से ही आपको अलौकिक वातावरण मिला। उसी अलौकिक वातावरण में लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाइयां पढ़ के बड़े हुए और 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और फिर दूसरी बार 1972 में, और 1972 में तो फिर अपना जीवन भी ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। 72 से 2022 50 वर्षों का सफर आपने इस मधुबन धरनी पर तय किया है और इसमें बहुत सारी उपलब्धियां आपने हासिल की है, जैसे कि मुरली का मुख्य कारोबार बाबा ने आपके कंधों पर रखा कि जो मुरलियां पहले सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना। तो ये सेवा आप 1976 से आज दिन तक बखूबी निभा रहे हैं और समय के साथ साथ फिर पत्र पुष्प कंपोज करना आरंभ किया। अव्यक्त मुरलियों में से छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार करनी शुरू की। दादियों के पास जो पत्र आते हैं उनको आप रिस्पॉन्ड करते, रिप्लाई करते हैं। फोटो कॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी डिपार्टमेंट आपके निर्देशन में चलता है और उसके साथ साथ फिर ग्रामीण विकास प्रभाग तैयार हुआ जिसके आप वर्तमान में वाइस चेयरपर्सन हैं, जिस प्रभाग के द्वारा एक बहुत सुंदर कंसेप्ट सभी को मिला, शाश्वत यौगिक खेती का। मुख्य सेवा तो आपकी मुरली से आरंभ हुई है और इसलिए मुरली ही आपके दिलो दिमाग में हमेशा छपी रहती है। तो उसी के आधार पर एक टॉक शो भी आपने किया, अमूल्य रतन, जिसके 1200 से भी अधिक एपिसोड आपने पूरे कर लिए हैं और आप सभी शायद उनका लाभ लेते होंगे, अव्यक्तवाणियों का स्पष्टीकरण जिससे मिलता है। तो बहुत ही प्रतिभाओं के धनी हैं आप और पूरे ही भारत भर में भ्रमण करते रहते हैं। सौभाग्य से आज हमें उपलब्ध है, आज हमारे बीच में विराजमान है, तो बहुत सुंदर विषय पर प्रकाश डालेंगे, स्वराज्य अधिकारी आत्मा कैसे बने। तो सुनते हैं भ्राता जी को, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी का बहुत सुंदर गीत अभी आप सबने सुना। हम सब जिस दिन से बाबा के बच्चे बने हैं, पहला ही पाठ बाबा ने हम सबको दिया, आप आत्मा इस शरीर की राजा हैं, ये कर्म इंद्रियां आपकी कर्मचारी हैं, अपने स्वराज्य की स्मृति से अपनी कर्म इंद्रियों को, विशेष करके अपनी चैतन्य शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाओ। अगर मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो कर्म इंद्रियां तो मन की गुलाम है, मन को वश में कर लो तो सब कर्म इंद्रियां आपके कहने अनुसार कार्य करेंगे, आप स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। इस विषय को स्पष्ट करने के पहले, आप सब जानते हैं क्योंकि इसका ही मूल अभ्यास हम सब करते हैं, लेकिन आज जिन दिनों में आप मधुबन पधारे हैं, जिस मौसम का आनंद ले रहे हैं, उसको देखते मुझे वो दिन याद आए जब हमारी दीदी मनमोहिनी जी 28 जुलाई को अव्यक्त हुई थी। आज 26 है और दीदी की पालना मुझे 11 साल तक मिली है। कोई है इससे जिन्होंने दीदी जी को देखा है, पालना ली है? एक ही है, दो माताएं उठा रही हैं बीच में से, और दो तीन भाई हैं बस। क्योंकि वो दिन याद है, सतगुरुवार का ही दिन था, 83 में 28 जुलाई को सवेरे 8:15 बजे बाबा को भोग लग रहा था। संदेशी चंडीगढ़ की अचल दीदी थी, और अचल दीदी जब ट्रांस में गई तो बाबा ने दीदी को वतन में ऐसे दिखा दिया जैसे वो बाबा के पास सदा के लिए आ गई हैं। बहुत सारे बच्चे बाबा के यहाँ आए हुए हैं, मधुबन का दृश्य दिखाया, और साथ साथ बहुत सारी फूल मालाएं उनके रथ पर चढ़ रही हैं। तो वो दृश्य देख करके भोग लगाते लगाते नीचे आई और रोने लगी। तो सबने समझा क्या हो गया संदेशी को, क्योंकि उस समय तक दीदी के शरीर छोड़ने का समाचार नहीं था हमारे पास। दादी जी यहां थी और जानकी दादी जी दीदी के पास थी बॉम्बे में, बॉम्बे हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा था। तो संदेशी ने थोड़े शब्दों में ही सुनाया, और सुनाते सुनाते जब वो बिल्कुल बंद हो गई बोलना, रोने लगी, गला भर गया, तो उसके बाद वहां से आधा घंटे के बाद ही करीब 9 बजे फोन आया बॉम्बे से कि दीदी जी ने अपना भौतिक देह त्याग दिया है। अब दादी जी को हम सब ने घेरा, दादी जी यहीं खड़ी हुई आंगन में, इधर बरसात के दिन थे, खूब बरसात पड़ रही थी, और डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत दिनों से आईसीयू में रही हैं, दवाइयों पर रही हैं, इसलिए बॉडी इतनी फिर से रखने लायक नहीं है, इसलिए आप हो सके तो यही संस्कार कर दो बॉम्बे में ही। तो यहाँ पर हम सब ने दादी को बोला, दीदी को ऐसे कैसे करेंगे, हम सब चलेंगे बॉम्बे चलेंगे। और दादी जी भी तैयार हो गई, चलो हम सब मधुबन वाले चलते, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक संस्कार नहीं होगा। लेकिन दादी कहे इतने सब ब्राह्मण आत्माएं, उनका इतना दीदी से प्यार है, इतनी पालना ली है, और सबको पता चलेगा तो कहेंगे ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि रोज संदेश आता था, अभी दीदी ठीक है, अभी बोल रही है, अभी देखने लगी है, अभी ये, और अचानक शरीर छूटने का समाचार आया। तो दादी जी ने जानकी दादी को बोला, तुम कैसे भी करके दीदी को मधुबन लेके आ जाओ, डॉक्टर को समझाओ। दादी जानकी तो बहुत पावरफुल थी, जानकी दादी ने डॉक्टर को बोला, जो भी हो जैसा भी हो, आप जैसे भी तैयार करो इनको, मुझे मधुबन लेके जाना है। बस 28 तारीख दो तीन चार घंटे का ही वो खेल था, जो हलचल बहुत थी। उसके बाद डॉक्टर्स ने तैयार किया शरीर को और कहा भले ले जाओ। और यहाँ पर 29 तारीख को लेकर के आए, बहुत भीड़ हो गई, बहुत बरसात थी, फागी बहुत, बरसात बहुत, और कम से कम 2-3 हजार लोग तो आ गए। ओम शांति भवन तो बन गया था, रात को वहाँ रखा गया, सबने दर्शन किए, और 30 तारीख को उनका अंतिम संस्कार जहाँ किए जाते हैं वहीं पर हुआ। और उसके बाद बाबा आए, क्योंकि बहुत ब्राह्मणों के संकल्प चलते हैं और वो संकल्प ये चलते थे, अगर डॉक्टर्स ने पहले से बता दिया होता कि इतना बड़ा ऑपरेशन है तो हम यहाँ ऑपरेशन क्यों कराते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बहुत छोटी सी गांठ है और उसका मूल कारण था बताने का डॉक्टर का। दीदी को एक दिन यहाँ इसी कमरे में चक्कर आया था, सवेरे सवेरे वो 4 बजे स्नान करके योग कराने आती थी, तो स्नान करने के लिए कमरे में गई बाथरूम में और थोड़ा सा चक्कर आया और यहाँ चोट लगी, तो आधा घंटा 15-20 मिनट हो गए योग कराने नहीं आई, तो दादी जी खुद देखने आई दीदी को क्या हो गया। तो दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे बाथरूम में चक्कर आया है, तो दादी जी ने उनको कहा कि आप एक बार चेक करा के आ जाओ, शायद बड़ी आयु है, आंखों की रोशनी में कुछ गड़बड़ दिखती है, दिखता नहीं है इतना। तो दादी जी ने बहुत फोर्स से दीदी को बॉम्बे भेजा, और बॉम्बे में डॉक्टर्स ने जब आयुष को आंखों को चेक किया तो कह दिया कि आंखें तो ठीक हैं लेकिन यहाँ पर जो ब्लड बराबर आंखों को मिलना चाहिए उसकी बजाय एक छोटी सी गांठ है ब्रेन पर, और वो छोटा सा ऑपरेशन है, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कुछ ऐसी घड़ियां थी, बहुत दिनों से दीदी जी को वैराग्य था और वैराग्य के अंदर वो करीब 1 साल से ही लगभग हम जब भी कोई कारोबार के लिए जाते थे, क्योंकि हमारा बहुत संबंध था लिखने का, हर पत्र का उत्तर देना दीदी का, बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा के पास जो भी पत्र आते थे, दीदी ने बाबा के अव्यक्त होने के बाद जवाबदारी ली थी कि सभी पत्रों का जवाब मैं दूंगी, जितने भी पत्र आएंगे, और उसमें हम सबको साथी बनाया था, हम टाइप करके प्रश्न उत्तर देते थे और एक तरफ अंतर्देशी पर प्रश्न उत्तर होते थे और दूसरी तरफ पत्र का उत्तर होता था। तो सेवाएं करते पहले तो बहुत हर प्रकार की सेवा में हर प्रकार का डायरेक्शन देना, इंटरनल सारी कारोबार जो मम्मा की थी वो दीदी ने संभाली हुई थी, लेकिन कुछ समय से बस छोड़ो, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और इसी पर ही उन्होंने गीत बना दिया भाइयों ने, अब घर चलना है, अब घर चलना है। तो दीदी को वैराग्य था, और जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की बात कही तो गुलजार दादी, बड़ी दादी सब बॉम्बे पहुंच गए, जैसे कोई विदाई दी जाती ना छुट्टी, पता नहीं था ये सब। लेकिन बाबा से जब छुट्टी लेने लगी गुलजार दादी बैठी, तो बॉम्बे में पहली बार बाबा आए, गुलजार दादी के तन में आ गए बाबा, और बाबा ने बहुत प्यार से अंतिम जैसे विदाई दी जाती है गोद में लेकर के सब प्रकार से उसको शक्ति दी, सामर्थ्य दी, और हॉस्पिटल गई, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद कोमा में चली गई, कुछ पता नहीं उनका उसके बाद क्या हुआ। करीब 21 दिन हॉस्पिटल में रही, कभी आंख खोलती थी दीदी दादी, कभी कोई जाती थी दादियां तो देखती थी, फिर शांत हो जाती थी, तो सबको लगता था अभी ठीक हो गई, अभी ठीक हो गई, अभी ठीक हो गई, लेकिन शरीर छूटा तो सबके अंदर संकल्प चले क्या हो गया, कैसे हो गया, और सबने डॉक्टर्स के प्रति कुछ न कुछ नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। तो जब बाबा आए तो बाबा ने एक शब्द में कहा कि बच्ची न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है, डॉक्टर का नाम भगवती था। तो बाबा ने बड़े रमणीकता से शाम के समय संस्कार के बाद बाबा की पधरावनी हुई, और बाबा ने कहा न इसमें भगवान का दोष है न भगवती का दोष है, बच्ची को जैसे स्थापना के कार्य में सदा हर बात में आगे रही है, ऐसे ही नई सृष्टि की स्थापना में आगे जाने के लिए बाबा ने उसको एडवांस पार्टी में बुलाया है, इसलिए आप लोग कोई संकल्प नहीं चलाओ, ये ड्रामा की भावी बिल्कुल निश्चित थी, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ऐसे करके बाबा ने उस बात को शांत कर दिया। और फिर जब दादी जी के साथ कौन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी कारोबार दीदी ने संभाली हुई थी, यज्ञ की नंबर था दादी जानकी का, और बाबा ने एक धक से बोल दिया कि जानकी को यहाँ नहीं रहना है, वो तो विदेश में ही रहेंगे, क्योंकि विदेश की इतनी सेवाओं को संभाल रही है। और दादी जी के साथ फिर चंद्रमयी दादी, मनोहर इंद्रा दादी, शांतामय दादी, इन दादियों का नाम लेके बाबा ने कहा ये सब इनके साथी हैं। तो जानकी दादी को फिर से विदेश जाना पड़ा और दादियां फिर इनके साथ सहयोगी बनी। लेकिन दीदी जी की एक बहुत बड़ी वंडरफुल विशेषता थी, वो मैं विशेषता कुछ बातों में सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो 11 साल दीदी के साथ रह करके सीखा है, पालना ली है, जो कुछ उन्होंने सिखाया है उसी का ही आज यज्ञ के कई पिल्लर्स जो गुप्त हैं दिखाई नहीं देते, चाहे वो इतना बड़ा अनाज का डिपार्टमेंट है, खाद्य सामग्री का डिपार्टमेंट है, चाहे वो अकाउंट का डिपार्टमेंट है, चाहे ये मुरली का डिपार्टमेंट है, जो भी इसके मुख्य हैं, जो दीदी की पालना लिए हुए हैं। और दीदी की पालना ऐसी थी जैसे बाबा के यज्ञ के प्रति उनका जिगरी प्यार था, नाम गोपी था लौकिक में, और पक्की वो गोपिका थी, बस बाबा कहे और बाबा के प्यार में समा जाए। एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता स्थिति, जरा भी कोई देहधारी का आकर्षण न हो और किसी का भी न हो, हर एक के प्रति इतनी नजर सकती थी। और जब हम लोग पहले पहले आए तो इतना पढ़ाई का कदर नहीं, इतना तो कुछ पता ही नहीं था, नियम क्या होते हैं, मर्यादाएं क्या होती हैं, स्कूल की लाइफ से पढ़ते पढ़ते आ गए, रहने लगे, परखा दीदी नहीं था, रखा दीदी नहीं, लेकिन परखने के बाद बहुत प्यार से कोई एक छोटी छोटी बात का इशारा देते थे, और उसमें विशेष दो बातों का इशारा आते ही मिला था। पहली बात दीदी ने कही, संघ की संभाल रखना। जब मेरे को ये बात पर्सनल कही कि संघ की संभाल रखना, तो मैं दीदी को नीचे से ऊपर तक देखने लगा, तो दीदी कहती क्या देखता है, संघ की संभाल बोली तो समझ में नहीं आया ना दीदी, जिनका खराब संघ था उनका तो छोड़ के आ गए हम, स्कूल का, कॉलेज का, लड़कों का, और यहां मधुबन में आकर के भी यही संघ की संभाल रखना, यहां भी खराब संघ है क्या? तो दीदी बहुत मुस्कुराते हुए मुझे बोलती है कि कई ऐसे बाबा के घर में सेवा करते करते रह जाते हैं जो केवल सेवा के लिए आए हैं, सेवा करते हैं, भोजन करते हैं, कपड़े लेते हैं और सोते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। अगर उनका पढ़ाई से ध्यान नहीं है, पढ़ाई से प्यार नहीं है, अमृत वेले उठते नहीं है, मुरली क्लास नहीं करते हैं, सोन्नति पर ध्यान नहीं है, और तुम उनके संग में अगर चले गए तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए बहुत संभल करके यहां पर चलना है। अगर कोई बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, पढ़ाई के प्रति कोई भी व्यर्थ बातें, इधर उधर की बातें, नेगेटिव या ऐसी बातें करें, तो समझ जाना इसका संग ठीक नहीं है, उसके साथ नहीं बैठना है। रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अपनेपन की जिसके पास अनुभूति नहीं है, अपना घर है, अपना यज्ञ है, हम कोई दो चार छह घंटे के नौकर नहीं है, अपने घर में सदा के लिए हम सेवा पर रहते हैं, अगर कोई रग वाला, अपनेपन की महसूसता वाला यहाँ नहीं है, तो समझ जाना इसका संग ठीक नहीं है। ऐसे तीन चार बातें अच्छी तरह से बताई, संग उसी का करना जो बहुत अच्छा अंतर्मुखी है, ज्ञान योग का मस्ती में रहता है, अपने चिंतन में रहता है, कोई परचिंतन नहीं, पर दर्शन नहीं, उसके संग में रहना पहली शिक्षा दी। फिर दीदी हम सबको ज्ञान और योग पर इतना अटेंशन खिंचवाती थी, क्योंकि उनका पढ़ाई से बहुत प्यार था, भले स्कूल में नहीं पढ़ी थी, कभी स्कूल में क्लास भी पढ़ने के लिए गई नहीं, बचपन में शादी हो गई, उसके बाद बाबा मिल गया, और बाबा ने सोचा इसको मैं कुछ पढ़ाऊं, एक टीचर रख दी बाबा ने, तो बहुत होशियार और बहुत तेज बुद्धि वाली थी, तो टीचर ने बताया, बाबा को कंप्लेन किया, ये दीदी तो कुछ पढ़ती नहीं है, सीखती नहीं है, जो भी सिखाओ तो उसका उल्टा ही अर्थ निकालती है। तो बाबा ने बुलाया, बच्ची ऐसा नहीं करो ना, कुछ तो सीख लो, कुछ तो पढ़ाई कर लो। तो दीदी कहती है, ये जो टीचर है ना मेरी, ये मेरे से पता बाबा क्या लिखवाती है, कहती है तुम धृतराष्ट्र लिखो। अब उस अंधे का नाम मैं क्यों लिखूं? धृतराष्ट्र हिंदी में लिखना बड़ा मुश्किल होता है, धारा नीचे ऊपर, तो दीदी को लिखना तो आता नहीं था। तो बाबा को हंसा दिया बोल करके, मतलब इतनी रमणीकता से बोला। तो बाबा कहता, अच्छा बच्ची छोड़ दो इसको, बाबा पढ़ा लेगा अपने आप। दीदी ने कभी हिंदी में साइन नहीं किया, सिंधी में थोड़ा साइन कर लेती थी, लेकिन पढ़ाई से बाबा की मुरली से इतना प्यार था। जब हम आए हैं तो दादी जी ही मुरली सुनाती थी, दीदी ने कभी मुरली तो सुनाई नहीं, पढ़ती नहीं थी, लेकिन दादी का मुरली सुनाना और दीदी नंबर वन स्टूडेंट, सबसे आगे डायरी पेन लेके ऐसे बैठती थी, क्योंकि ये सोफे कुर्सी तो थे ही नहीं। जो आज बाबा पढ़ाई की बात करें, देखो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, हमारी गोपी बहन ने तो इस सोफे कुर्सी वाली बात किया, लेकिन वो बात थी जब बाबा के इस घर में एक भी कुर्सी नहीं थी, एक भी सोफा नहीं था, चाहे जो भी हो, बुजुर्ग हो तो भी नीचे ही बैठेगा। छोटा ही हाल था, हिस्ट्री हाल था जब हम आए हैं, तो उसमें दीदी नंबर वन स्टूडेंट सबसे आगे बैठ करके और बड़े अच्छे सार ठंड में प्रश्न उत्तर लिखते, अपनी सार ठंड, स्कूल की नहीं। जैसे परमात्मा लिखना तो पी लिख दिया, सृष्टि चक्र लिखना है तो एस और सी लिख दिया, ऐसे कुछ अच्छी अपनी सार ठंड, लक्ष्मी नारायण लिखना है तो एल और एन लिख दिया। और जब मैंने सिंधी सीखी तो सिंधी तो मैंने सबकी पढ़ना सीख लिया, गुलजार दादी की राइटिंग, बड़ी दादी की राइटिंग, और ईश्वर दादी तो बहुत अच्छी शब्द लिखती थी, शांतामणि दादी के तो ऐसे मोती जैसे अक्षर थे, सबकी मैं पढ़ लेता था। और जब मैंने सिखाई, दीदी ने कहा तुम सिंधी सीखो तब टाइप सीखना, तो पहले नंबर में मेरे को अपनी डायरी पकड़ा दी कि पढ़ो इसको। मैं देखा, हमने कहा दीदी इसमें तो एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, क्या लिखा आपने मुझे नहीं पता। तो दीदी कहती, अगर ये नहीं पढ़ेगा तो तुम क्या टाइप करेगा, इसी से तो टाइप करना तुमको। हमने दीदी, अच्छा आप ही पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। दीदी अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाती थी तो कहती, अच्छा ठीक है, तुम, एक दादी थी कमलमणि दादी, इसके साथ बैठो, ये बहुत अच्छी तरह से मेरी राइटिंग पढ़ती है। और दादियां बड़ी सीधी सादी, बहुत भोली सच्ची, जो कहो जैसे कहो जहां बिठाओ। तो मैं रोज उनको अपने ऑफिस में ले आता था, मेरा ऑफिस यहीं था, जो भी डिस्पेंसरी ना उसके पीछे साथ में ही था, टाइपराइटर वहीं एक रखी थी, वहीं मैं टाइप करता था। तो कमलमणि दादी मेरे पास आके बैठती थी, मेरे को बोलती थी, सिखाती थी, ये लिखा है दीदी ने, ये लिखा है, ऐसे टाइप करो, ये करो। तो सिंधी भी पढ़ना, दीदी की राइटिंग पढ़ना मैं सीख गया थोड़े दिन में। और दीदी के अंदर ये रहता था कि इनको हर प्रकार से ऑलराउंडर बनाए, हर प्रकार से नहीं एक डिपार्टमेंट हो, इन सब काम करना जी सीखने चाहिए, क्योंकि घर की सारी कारोबार वो देखती थी, दादी ऑफिशियल बाहर का सारा कारोबार देखते थे। तो दीदी के अंदर रहता था कि ये सब काम करें। तो एक दिन अनाउंस हुआ, बड़ी रमणीक बात सुनाता हूँ आपको, क्लास में अनाउंस हुआ कि मुरली क्लास के बाद हर एक को सब्जी जरूर काटनी है, जब तक सब्जी नहीं कटेगी तब तक नाश्ता नहीं करना है, नियम बना दिया गया, क्योंकि सब्जी नहीं कटेगी तो भोजन कैसे बनेगा। तो सभी के सभी सब्जी पर आ गए और मैं भी आ गया सब्जी काटने के लिए। तो सब बैठ गए, सब्जी काटने लगे, तो दीदी ने चक्कर लगाना शुरू किया, आई देखा, मेरे को बुलाया, इधर आओ। मैंने पता नहीं क्या गलती किया, कहती तुम यहां क्यों बैठा है। तो दीदी अनाउंस हुआ है कि नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक सब्जी नहीं कटेगी। तेरे लिए थोड़ी अनाउंस हुआ है, तुमको तो अभी मुरली टाइप करनी, प्रश्न उत्तर करना है जाके, दीदी को इतनी पोस्ट लिखनी है और तुम सब्जी पर बैठा हुआ है। हर एक के लिए डायरेक्शन नहीं होता, जो फ्री होते उनके लिए होता है जो फ्री घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो कम से कम सब्जी काटेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तुम्हारे पास तो सेवा है, तुम थोड़ी नाश्ते पर जा रहे थे, तुमको तो मुरली टाइप करनी, प्रश्न उत्तर निकालने। समझ गया मैं, श्रीमत भी समझ के चलानी है, डायरेक्शन भी समझ के चलना होता है। तो ऐसे दीदी बहुत प्यार से युक्ति युक्त नियम मर्यादाएं क्या होती हैं और रमणीकता से कैसे हर एक चीज सिखाई जाए। मैं तीन चार बातें बड़ी रमणीक सुनाता हूं आपको, कोई कोई ने सुनी होंगी, कभी कभी सुनाई है मैंने क्लासेज में। दीदी ने रमणीकता बहुत थी और दीदी के जैसे भगवान बस में थे, अंडर बहुत प्यार था। और दीदी कह दें तो बाबा को आना ही है, कहीं भी बैठे हो, उलझा दादी कहीं बैठे हो, जाओ भी बाबा बुला लो, कमरे में बुला लो। एक बार यहां एक गाड़ी लिया गया, नई नई पहली गाड़ी आई, गाड़ी आई तो दादी दीदी गुलजार दादी और एक चलाने वाला भाई, चार जने बैठे उस गाड़ी में, फीएट गाड़ी थी वो पहली पहली, उसको लेके गए और प्लेन से गई होगी दीदी, सब चीजें ले गई, नारियल नींबू जो भी गाड़ी की पूजा के लिए होता है, और यहां से ले गई चला करके उधर अनादरा पॉइंट जिसको हनीमून पॉइंट कहते वहां खड़ी कर दिया गाड़ी को। कहती है गुलजार जब तक इस गाड़ी का उद्घाटन बाबा नहीं करेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे, तुम यहीं पर बाबा को बुला लो। अनादरा पॉइंट पर गाड़ी खड़ी और दादी बड़ी सीधी सरल चली गई, गाड़ी में बैठे बैठे चली गई वहीं अनादरा पॉइंट पर, और बाबा आ गए। बाबा आए, दीदी दादी ने बाबा को बाबा से दृष्टि ली और बाबा को नीचे उतारा गाड़ी के, बाबा को ऐसे दिखाया सारी गाड़ी और बाबा को बोला बाबा नारियल तोड़ो, बाबा ने नारियल तोड़ दिया। फिर बाबा दो ही शब्द चार शब्द बोला कि बच्ची ये गाड़ी क्या है, ये तो गाड़ियों की लाइन लगने वाली है, ऐसे कह के वरदान दिया और पांच मिनट में उद्घाटन करके बाबा चले गए। तो दीदी दादी का जैसे बाबा के ऊपर इतना अधिकार था, अव्यक्त हुए बाबा लेकिन बाबा ने वायदा कर लिया था कि जब बच्चियां कहेंगी तब बाबा आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी काम कोई भी बात हो तुरंत, जैसे कोई कनेक्शन होता है ना ऐसे जाना और आना। तो ऐसे एक बार दीदी को बड़ी रमणीकता से कुछ न कुछ सिखाने के भाव से हम लोगों को कहती थी, देवताएं कैसे चलते हैं, देवताएं कैसे खाते हैं तुमको पता है? तो हम लोगों ने ऐसे बोल दिया हमको क्या पता देवताएं कैसे चलते हैं। कहती अच्छा ठीक है आज तुमको सिखाती हूं कैसे। तो एक दिन वो छोटे हाल को स्वर्ग में सजाया गया, स्वर्ग बनाया गया, वहां सतयुग का सीन ऐसे ऐसे स्टेज बना करके बहुत सुंदर डिजाइन से सजाया, और सजाने के बाद दो संदेशियों को बुलाया, और बहुत बाबा की फेवरेट संदेशी थी संतरी दादी और दूसरी थी शील दादी, दोनों यही थी उस समय। शील दादी को श्री नारायण की ड्रेस पहनाई, शील दादी थी दीदी की लौकिक छोटी बहन, ट्रांस में जाते थे, और संतरी दादी भी बाबा की बहू ही थी लौकिक में, भतीजे की युगल, बहुत बहुत सीधी सरल। तो दोनों को, एक को श्री लक्ष्मी की ड्रेस एक को श्री नारायण की ड्रेस पहना दी और भोग लगाने के लिए बिठाया, बोला अभी तुम दोनों जाओ बाबा के पास और बाबा को बोलो कि श्री नारायण और श्री लक्ष्मी की आत्मा को इस तन में भेजे, बच्चों को दिखाना है कि कैसे बच्चे देवताएं खाते हैं, देवताएं रहते हैं, देवताएं चलते हैं, देवताएं दृष्ट, इनको सबको सिखाना है, सिखाने के लिए। अब वो भोग लगा, ट्रांस में गई दोनों, एक में श्री लक्ष्मी की आत्मा का आह्वान हुआ, एक में श्री नारायण का हुआ। बड़े रमणीक दृश्य है ना ये, बचपन के मेरे सामने के, इसलिए सुना रहा हूं, सुनी सुनाई नहीं सुना रहा हूं, देखी नहीं आंखों से देखी हुई सुना रहा हूं। तो जब श्री नारायण श्री लक्ष्मी आए, दोनों आत्माएं इमर्ज हुई, क्या दृष्टि, एक दूसरे को स्नेह की दृष्टि देना, बहुत देर तक देखते रहे एक दूसरे को, फिर उनके हाथ मिलाने का ढंग, हाथ मिलाया, फिर दीदी गई नजदीक में, उनको कहा तो चल के तो दिखाओ देवताएं कैसे चलते, फिर देवताओं को चलाया इस पूरे हाल में, ऐसे चक्कर लगवाया धीरे धीरे, एकदम एक श्री नारायण आगे से लक्ष्मी पीछे, एक कदम पर जैसे कदम चलते हैं ऐसे। फिर बोला अच्छा भोग रख दिया, भोग भी बहुत प्रकार का, 56 प्रकार का देवताओं को भोग लगता है ना, कैसे खाते हैं देख लो तुम लोग। एक ने चम्मच से एक को खिलाया, दूसरे ने से दोनों, एक दूसरे को खिलाया, बहुत थोड़ा थोड़ा इसे भोग की रीति से सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाया। दीदी ने कहा देखो देवता ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे रहते हैं, यही संस्कार धारण करने हैं। तो ये दृश्य जैसे एक बहुत सुंदर इमर्ज हुआ और सारा दृश्य साकार रूप में सतयुग का बाबा ने दिखा दिया संदेशों के द्वारा। उसके बाद दीदी को एक उमंग आया कि इनको आज 108 प्रकार का ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे। रमणीक थी और बहुत परीक्षा लेती थी कि देखें क्या कितनी आसक्तियां हैं लोगों के अंदर। तो बहुत वैरायटी भोग बना, बहुत सब प्रकार के फल, सब प्रकार की टोलियां, सब प्रकार का भोजन। अब 108 प्रकार में क्या होगा, 56 प्रकार 36 प्रकार के तो दो तीन चार बार बने, लेकिन एक बार 108 प्रकार का लगवा दिया। तो वो भोजन जब बन करके सब तैयार हो करके सबके सामने आने लगा तो थोड़ा 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 आने लगा। और दीदी पहले चक्कर लगाती है, ऐसे चारों तरफ दृष्टि देती है, सबको मिला, सब चीजें मिल गई, फिर एक जगह खुद बैठ जाती सामने, कहती अच्छा बाबा के याद में भूख स्वीकार करो, और नजर रखती थी कौन क्या पहले खाता है, किसमें किसकी आसक्ति है। और देखने के बाद इतना सब कौन खाएगा, खाएंगे तो इतना इतना छोटा छोटा, कोई सारा हलवा खा गए मान लो, और चीजें खा गए। तो दीदी बाद में कहती थी इनको सबको एक एक पुड़िया दो, सब अपना अपना बचा हुआ अपने साथ ले जाए, खाएंगे तो सब इतना नहीं, तो सबको छोटी छोटी पुड़िया बना करके अपना अपना डालो, अपने थैली लो, ले जाओ साथ में, जितना खाया उतना खाया। लेकिन ट्रेनिंग ये देती थी कि खाने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, देवताओं की कभी भोजन में आसक्ति नहीं गई, थे वैरायटी, बहुत भोजन थे, लेकिन आसक्ति वाली जो खान पान है वो ठीक नहीं, वो शरीर को नुकसान करता है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग देने का तरीका, प्रैक्टिकल करके सिखाने का तरीका, वो दीदी का बड़ा वंडरफुल था। और इस रीति से हम सबको एक एक चीज की ट्रेनिंग देती थी, इसलिए इतना फाउंडेशन पक्का करा दिया। एक बार अमृत वेले की बात सुनाता हूं, नेचुरल है, कई बार सो जाते हैं बिस्तर पर या योग करके बीच में उठ करके सो जाते हैं, और दीदी खुद योग कराती थी इसलिए उनका ध्यान तो चला जाता था, कौन गए कौन आए कौन नहीं गए। और छोटा सा परिवार था, हम यहाँ पर 40-50 लोग समर्पित थे, पार्टियां आ गई तो अधिक से अधिक 30-40 आ जाते थे, इतना छोटे घर में हम रहते थे। तो दीदी ने एक बार दादी जी को कहा, दादी ये जब गोप है ना ये सुस्त होते जा रहे हैं, योग नहीं करते हैं पूरा, ये सैर भी नहीं करने जाते हैं, और ये सब सुस्त हो जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे, अभी यंग है सारे, हम लोग 18 साल 20 साल वाले थे। तो एक दिन दादी को कहा कि दादी इन पर नजर रखो और पहले चेक करो ये कौन कौन जाके बिस्तर पर सो जाते हैं। तो दादी और मोहिनी बहन को हमारी चेकिंग के लिए भेज दिया, और हम सब वहां एक पांडव भवन में, वो लाइट हाउस है भाइयों का कमरा, 25 लोग उसमें रहते थे, पांच पांच एक एक कमरे में, पांच ही कमरे हैं। तो दादी और मोहिनी बहन सवेरे 4:30 बजे योग के आधा के बीच में उठी, और दादी जी ने अपना एक पल्लू का घूंघट बनाया और मोहिनी बहन ने भी घूंघट निकाल लिया, दोनों अपने सकल को ढक करके घूंघट निकाल के सीढ़ी पर चढ़ने लगे। और ड्रामानुसार उस दिन भी मैं भी उठ करके पहले चला गया था, हम थे 3-4 भाई थे, लेकिन हम सोए नहीं थे, हम जग रहे थे, और बाहर ही वॉश बेसन थी, बाथरूम में तो होती नहीं, तो सब अपना अपना ब्रश कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। तो दादियां जब दोनों चढ़ने लगी, मोहिनी बहन और दादी, तो हमने जोर से आवाज दिया, अरे माताएं इधर नहीं आओ, भाइयों का स्थान है, यहाँ भाई लोग रहते हैं, माताएं क्यों आ रही इधर। तो जोर से चिल्लाए, ऊपर से आवाज दी, तो दादी ने ऐसे थोड़ा देख करके ऐसे सीटी बजाई, चुप बोलना नहीं कोई, हम समझ गए आज से खुटी आ गई, चेकिंग शुरू हो गई। ऊपर आई और आकर के पहले कमरे से चक्कर लगाना शुरू कर दिया, हम लोगों को साथ लिया, देखो कौन कौन सोए हैं सबका नाम नोट करो, बोलना नहीं, जगाना नहीं किसी को। एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे पांचों कमरे में जो जो सोए थे, 5-7-8 सोए होंगे, तो इधर से उधर उतर करके दूसरी सीढ़ी से, एक से चढ़ी दूसरे से उतर के चली गई। अब चर्चा तो हो गई, सब जगत हो गए, आज हमारी चेकिंग हुई, हमारा नाम नोट हो गया। बेचारे जिनका नोट हुआ तो बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, अब क्या होगा, पता नहीं कौन सी सजा मिलेगी। तो दादी ने वो सब नोट करके चिटकी बना करके दीदी के हाथ में पकड़ा दिया। दीदी कंट्रोलर थी, दीदी ही सबको शिक्षाएं देती थी इस प्रकार की। तो सब नाश्ता वास्ता जब पूरा हो गया 8:30-9 बजे, तो दीदी ने, यहाँ दीदी अपने कमरे में ऑफिस में बैठती थी, तो उनके पास एक बेल होती थी, बेल बजाती थी, पहरे वाला आ जाता था, फलाने को बुला लो, फलाने को बुला लो, और वो बेचारा जाता, जब बुलाने का नाम आता तो वो जिसको पता होता मेरा आज नाम गया है वो तो डर जाता, कांपने लगता, अब क्या होगा। और दीदी के पास बुलाते तो दीदी बड़े प्यार से अपने साथ सोफे में बिठा के, आओ अच्छा बैठो बैठो, बहुत प्यार से, तबीयत ठीक रहती है, प्यार पूछने का तरीका, तबीयत ठीक रहती है, आज अमृत वेले उठे थे, सैर करने गए थे, नाश्ता किया है, मुरली सुनी है, ऐसे 4-5 प्रश्न पूछ के। अब बेचारा जो करता तो हाँ करेगा, नहीं तो कहेगा नहीं दीदी, जानता तो है सत्य बोलना पड़ेगा, अभी झूठ तो बोल नहीं सकता। तो सब पूछ करके फिर बाद में कहती थी, देखो आप सब बाबा के घर में समर्पित हुए हो, सेवा के लिए सिर्फ नहीं हो, अपनी स्थिति पहले बनानी है, और स्थिति बनाने का आधार तो केवल पढ़ाई और मुरली ही है। अगर इस समय भी आप सोए हुए हो, टाइम वेस्ट हो रहा है और सुस्ती है, तो सेवा क्या करोगे। इसलिए सब पहले अपने को संकल्प लो कि हम आगे के लिए ध्यान रखेंगे, ऐसे पक्का करा करके, और बहुत प्यार से टोली खिला करके, कोई डांट नहीं लगाई, बहुत प्यार करके टोली खिला के आगे के लिए ध्यान रखना, अटेंशन खिंचवाया और भेज दिया, उसे सुधार हुआ। लेकिन और सुधार का तरीका दादी ने एक अपना लिया, बड़ी दादी को लगा कि ये दीदी ने जो कहा इस पर थोड़ा और अमल करना चाहिए। तो एक भाई हमारे पास मिलिट्री से रिटायर होके आया था, और वो थोड़ा बहुत चुस्त था, गाड़ी चलाता था। दादी ने कहा कि तुम लोग, उस मिलिट्री वाले भाई को बोला, ये जितने भाई हैं सबको पीटी करो, इनको दौड़ाओ सवेरे सवेरे, अमृत वेले योग के बाद बोलो 20 मिनट में सब स्नान करके तैयार हो जाओ, फिर बहनों भाइयों को सबको दौड़ाओ, नक्की लेक पर ले जाओ दौड़ाते हुए। अब वो दादा इतना रमणीक था, अगर कोई भी लेटा हुआ हो तो बस आ गया कमरे में, अगर नहीं उठ रहा है तो उस पर पानी डाल देना, बैठ जाना उसके ऊपर आके, उठो दादी ने मुझे ऑर्डर किया, चलो साहब पीटी करने के लिए, दौड़ने के लिए। सुबह सुबह आकर के करीब 25-30 लोगों को, बहने भाइयों को, सबको तैयार करके दौड़ाता था नक्की लेक पर, वहां खड़े करके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बहुत चुस्त बना दिया सबको दादियों ने, ऐसा किया कि एक दिन भी इनको सुस्त नहीं बनाना अमृत वेले। तो ऐसे दीदी दादी की जो पालना थी ना, जब दौड़ के आते थे थके हुए होते थे तो दादी कहती चलो आज मक्खन माने इनको खिलाते हैं, मक्खन रोटी पर मक्खन लगा करके ऐसे सबको अपने हाथ से खिलाना, कि पहले एक्सरसाइज किया है अभी खुराक खाओ। पालना का एक तरीका था दीदी दादी का, और वो लक्ष्य रखती थी कि जो भी समर्पित हैं वो केवल सेवा के लिए नहीं है, वो पहले स्वस्थ भी रहें और हर एक समझे ये यज्ञ मेरा यज्ञ है, और इनको यज्ञ की हर चीज की सीख समझ मिलनी चाहिए। एक दिन दीदी और दादी में एक संस्कारों का मिलन, कहते हैं ना संस्कार मिलाने पड़ते हैं, संस्कार एक नहीं होते, संस्कार कब हो, दो के एक हो जाएंगे ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हर एक के बुद्धि से संकल्पों के आधार से जो कर्म हुए हैं उन कर्मों से संस्कार बने हैं। तो संस्कार एक हो जाएंगे ये तो अपेक्षा नहीं रखनी है, लेकिन संस्कार भिन्न हो और मिलाए जाएं, तो एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि दीदी और दादी के संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर था। दीदी थी बहुत बड़े घर की, बहुत पैसे वाले घर की, लेकिन बाबा के इस यज्ञ को बिगड़ी पाठ से होते हुए देखा था, इसलिए दीदी के अंदर था कि एक भी यज्ञ का पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, हर एक बहुत ध्यान दे कि मान लो आज हमको कपड़े मिले हैं, आज हमको छाता मिला, बरसात पड़ रही छाता मिला, हम गुम कर दें या कहीं हमारा टूट गया, हमको दूसरा चाहिए, बाहर तो खरीद नहीं सकते, पैसा तो कोई रख ही नहीं सकता था, 5 रुपये भी नहीं रख सकता था, कोई नियम था यज्ञ का। तो लेना यज्ञ से ही है, लेकिन अगर यज्ञ से लेना है मिलेगा जरूर, झूठ बोल करके नहीं। अगर अलबेलेपन में हमने गुम कर दिया है, नाम नहीं डाला है उसके ऊपर, कोई ठीक रखा नहीं है, संभाला नहीं है, तो उसकी हाजिरी जरूर होती थी। अगर हमने दूसरा मांगा कि मेरा गुम हो गया या टूट गया या उड़ गया छाता, ऐसे में उल्टा हो गया, तो कहती थी वो छाता ले करके आओ, पहले देखेगी दीदी फिर दूसरा मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। कपड़े अगर मान लो कहीं गुम हो गए हैं, कहीं नहीं हमने संभाले हैं, नंबर ठीक नहीं पड़े हैं, धुलने गए हैं, बाद में हमने उठाए नहीं हैं, तो ऐसे ही नहीं दूसरे कपड़े मिलेंगे, पहले वो ले आओ। कहाँ गुम किया, कहाँ चला गया, किसी को दे दिया क्या? तो एक एक चीज की बहुत इकोनॉमी है दीदी के अंदर, इकोनॉमी कितने संस्कार पक्के हो गए थे। एक बार क्या हुआ, यहां मारवाड़ी माताएं आई, और मारवाड़ी माताओं का पहला आना शुरू हुआ था 73 में मुजफ्फरपुर से, बहुत सारी मारवाड़ी माताएं, और उनकी आदत होती है ट्रेन में चलती हैं तो बहुत सारी वैरायटी भोजन की साथ लेके चलते, कुछ खाएंगे कुछ खिलाएंगे। तो यहां पर आने लगी जब, तो उनके पास बहुत सारा भोजन बच जाता था, तो उनकी कोई भावना नहीं थी कि हम मधुबन वालों को दें, लेकिन वो देखती थी एक कारपेंट्री डिपार्टमेंट में कुछ भाई काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी से पूछा नहीं और जा करके अपना बचा हुआ भोजन उस डिपार्टमेंट में दे आई। एक दिन दिया, वो भाइयों ने लिया और फेंक दिया, माताओं को पता नहीं इसलिए दे दिया होगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी आई तब वही धंधा, तो भाई गर्म हो गए, गुस्से में आ गए, कहते हैं ये क्या मतलब है, हम लोग कोई नौकर हैं क्या, हमको बचा हुआ भोजन ट्रेन का हमको देते हैं आकर के। तो दादी को कंप्लेन कर दिया, तो दादी कहती है माताएं तुमको क्यों भोजन देती हैं? भाई कहे मुझे क्या पता क्यों देती है, बुलाओ माताओं को। माताओं को बुलाया गया, पूछा माताएं तुम भोजन किसको देती हो, बचा हुआ भोजन किसी को देती हो? तो बोला हाँ दादी नौकरों को देती हूँ। बोला नौकरों को देती हो, नौकर कौन है, हमारे घर में नौकर तो ही नहीं। बोली ये जो कारपेंटर हैं वो कौन है, नौकर नहीं तो कौन है? कहती नौकर और भाइयों में क्या अंतर है, क्योंकि सभी रंगीन ड्रेस पहनते थे। तो दादी को उन्होंने कहा कि ये सब रंगीन ड्रेस पहन के घूमते हैं ना, काली पीली ड्रेस पहनते हैं, रंगीन ड्रेस, तो ये नौकर तो होंगे ना, और कौन है, भाई लोग तो सफेद ड्रेस पहनते हैं। माना उनकी भावना थी सफेद ड्रेस वाले ब्रह्मा कुमार हैं और रंगीन ड्रेस वाले नौकर हैं, इसलिए नौकरों को मैं देती हूं। अब दादी के बुद्धि में इतना बात अंदर चली गई कि सफेद ड्रेस में वो ब्रह्मा कुमार है, रंगीन ड्रेस में वो नौकर है, ये माताएं ऐसे समझ रही। अब दादी ने कहा आज से कोई भी पांडव, बहनें तो रंगीन ड्रेस नहीं पहनती थी, भाई पहनते थे, कोई भी भाई को रंगीन ड्रेस नहीं मिलेगी, ले आओ सभी के पास जितनी ड्रेस है सब ले आओ हाल में। अब छोटे हाल में सबकी ड्रेस मंगाई गई, जिसके पास जितनी रंगीन ड्रेस थी, और उस समय क्या था, भिगरी पार्ट था, इतना पैसा तो था नहीं जो खरीद करके पहनाया जाए। तो हांगकांग से एक भाई, हांगकांग में परिवार रहता था बाबा का, तो वहां के अच्छे अच्छे टेरिकॉट के पैंट सूट सेकेंड हैंड लेकर के, और पूरी गठरी की गठरी हांगकांग से यहाँ आती थी, और VIP हो IP हो बड़े हो छोटे हो सबको 5-5, 6-6 ड्रेस पैंट सूट की मिल जाती थी कलर, और वही हम सब पहन लेते थे, घर में कोई को कपड़े नहीं मिलते थे। तो जब दादी ने कहा कि अभी सभी भाई अपनी रंगीन ड्रेस यहां लेकर के आ जाए, जितनी जिसके पास है, हम सब लेकर के आ गए हाल में। दीदी कहे दादी आप क्या सोच रही हो, ये रंगीन ड्रेस ऐसे छुड़ाएंगे तो आपको कितनी सफेद ड्रेस देनी पड़ेंगी, आपको मालूम इनके काम ऐसे हैं, कितना साबुन चाहिए, कितना धोबी घाट का खर्चा होगा, और इतने फटेंगे ड्रेस, भंडारे वालों के तो दिन में 2 बार चाहिए ड्रेस चेंज करनी पड़ेंगी, आप इनको रंगीन ड्रेस पहनने दो दादी। अब दादी अपनी पावर में बैठ गई सीट पर, कहती है कुछ भी हो दीदी, मैं अपने पांडवों को नौकर के रूप में नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं इनको सफेद ड्रेस पहने नहीं दूंगी, ये रंगीन ड्रेस पहने नहीं दूंगी। दीदी चुप, संस्कार मोल्ड किया, ठीक है जैसे दादी आपकी मर्जी, जो आप चाहते करो। अच्छा, चार की जगह छह ड्रेस देनी पड़ेंगी, छह की जगह आठ देनी पड़ेंगी, मैं दूंगी कैसे भी दूंगी, लेकिन रंगीन ड्रेस किसी को नहीं मिलेगी, और सब जमा कर दो, उसी दिन सारी जमा करें, और दूसरे दिन सबको सफेद ड्रेस, भले लट्ठा मिला मोटा वाला, लेकिन सबको सफेद ड्रेस मिली। तो ऐसे संस्कारों को मिलाना, सबको साथ लेकर के चलना, दीदी दादी एकदम हर बात का ध्यान रखना, कोई भी बात हो, समय की सीमा है और आपका टॉपिक अलग रहेगा, लेकिन ये रमणीक कहानियां कभी कभी कोई को मिलती हैं, कोई ने सुनी होंगी, एक रमणीक कहानी सुना के पूरा करता हूं, है तो थोड़ी देह मन वाली। एक बार क्या हुआ, हम सब के बाल गिरने लगे एकदम, पानी यहां का ऐसा था थोड़ा, और हम लोग सब जवान थे तो बाल तो बहुत अच्छे थे सबके, घने घने थे, तो जब गिरने लगे तो दादी से डरते थे सभी, और दीदी थोड़ा सा रमणीक थी और चला लेती थी, दीदी कभी डायरेक्ट शिक्षा नहीं देती थी, दादी से दिलवाती थी। तो दादी बाहर टूर पर गई, और दादी जब बाहर टूर पर गई तो हम करीब 10-12-15 भाई बाजार में गए और सब मुंडन करा के आ गए। मुंडन कराया तो बाजार में एक चर्चा हो गई, शायद कोई दीक्षांत समारोह होगा इनके पास, या कोई इनका बड़ा चला गया होगा। क्योंकि सब गंजे, सब मुंडन किए हुए, और दीदी बड़ी रमणीकता से, दादी जिस दिन आने वाली थी उस दिन दीदी ने खेल किया कि दादी क्या कहती है, क्या समझती है, देखेंगे। तो सन्यासी बनाया दो को, मंडलेश्वर बना दिया, मंडलेश्वर की ड्रेस बनवा करके पहना दिया, मोटे मोटे जो थे ना उनको ड्रेस पहनाई गई सन्यासी की, चंदन लगवा दिया, यहाँ टीका लगवा दिया, और ऐसे ही उनको स्वागत के लिए खड़ा कर दिया। बाकी जब हम 15-20 थे मुंडन किए हुए, उनको एक लाइन में हाल के आगे ऐसे बिठा दिया सीधा, एक ही लाइन में, इधर उधर नहीं, सब एक लाइन में बैठेंगे। तो हम सब लाइन में ऐसे बैठे थे 15-20 भाई, और 3-4 भाई फूल लेकर के, तो दादी उनको पहचान नहीं पाई। जब आई ना गेट पर तो सोचा कोई मंडलेश्वर कोई सन्यासी आए होंगे। दादी को गुलदस्ता पकड़ाया और बड़े प्यार से, दादी तो उस समय बिल्कुल नहीं समझ पाई, और दीदी के साथ हाथ पकड़ के क्लास में आ गई, और क्लास में जब आई और योग कराने के लिए बैठी ऐसे, और देखती दादी दी, क्या है ये, कौन है ये, क्या हुआ तुम लोगों को, बस और कुछ नहीं, बस शुरू हो गई। और शुरू हुए तो बस क्या शिक्षाएं दी, क्यों ऐसा किया है, किसने कराया, किसकी छुट्टी से किया, किसने छुट्टी दिया तुम लोगों को, मन मत से चलते हो, अब डांट लगने लगी। तो एक भाई हिम्मत करके खड़ा हुआ, दीदी दादी हम लोगों के बाल झड़ रहे थे तो किसी ने राय दिया कि एक बार घुटा दो, घुटाने से फिर से आ जाएंगे। तो दीदी कहती है, दादी अगर इनके बाल झड़ रहे थे तो ये मेरे को बताते तो पहले, मैं इनको बादाम का तेल देती, ये बताते भी नहीं है, बादाम का तेल लगाते ना बाल आ जाते। अब दीदी दादी की वो जोड़ी, वो दिन याद आते हैं कि कैसे रमणीकता से सबको, फिर कहेंगे कि अब कर लिया तो कर लिया, कहती कोई भी काम बिना श्रीमत के नहीं किया जाता है, श्रीमत है, बड़ों से पूछा छुट्टी ली तुमने, ऐसा नहीं करना, कभी शिक्षा दिया। ऐसे बहुत सारे छोटे परिवार में तो ये सब बातें होती हैं, तो ऐसे बहुत रमणीकता के साथ हम लोगों की पालना हुई है, लेकिन ज्ञान और योग पर बहुत ध्यान दादियों ने दिया दिलाया, और दादी की तो प्रैक्टिस कैसी थी आप सब देखते थे, दादी प्रकाशमणि की पालना आपने ली है, वो स्वराज्य अधिकारी खुद थी, और हम सबको भी उसी आसन पर बैठने के लिए बार बार कहती थी, अगर तुमने मस्तक से नीचे उतर करके देखा तो ये शरीर सांप है, ये आपको डस लेगा, कभी भी स्वप्न संकल्प शुद्ध पवित्र नहीं हो सकते हैं, अगर अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाना है, पवित्रता की ऊंची मंजिल को क्रॉस करना है, आज तक साकार बाबा तो छुट्टी देते आए थे, आज भी छुट्टी मुरली में थी, बच्चे तूफान भले आएंगे लेकिन आग नहीं लगनी चाहिए, विकारी तूफान आते हैं, देह मान आता है, लेकिन कभी कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। अव्यक्त बाबा ने व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, देह मान के संकल्प भी समाप्त करना, उसके लिए बहुत सारी मुरलियां स्वराज्य अधिकारी बनने की सुनाई है। बहुत सारी मुरलियां चली है। आप अव्यक्त बाबा की हर साल के मुरली में देखेंगे तो एक मुरली तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा कैसे है, और बाबा ने खुद ही जो 1932 में प्रैक्टिस की थी मन को वजीर की तरह बात करके, हे मन तुम क्यों भटकता है, तुम क्यों नहीं हमारी सुनता है, क्यों गुरु का ध्यान करने नहीं देता। तो बाबा रोज दरबार लगाते थे, हम सबको भी रोज एक बार ये दरबार लगानी है। सामने इमर्ज करो, एक तरफ मन है, मन के साथ बुद्धि है, फिर संस्कार है, फिर आंख नाक कान मुख हाथ जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको सामने रख करके अपनी दरबार लगाओ और एक एक से बात करो, हे मन तुम मुझे बाबा का इस ध्यान क्यों नहीं करने देता, क्यों भटकता है, तुमको क्या चाहिए। अच्छा भोजन दो, अच्छे विचार दो, अच्छे अच्छे संकल्प करो, ये आपके नियंत्रण में रहेगा। तो मन बुद्धि संस्कार, जो मन के संकल्प आते हैं अगर आपके कंट्रोल में है, आपने उनको अपने वश में किया है, तो ये मन आपका वाहन है और इस मन के वाहन से आप बहुत अच्छी यात्रा कर सकते हो। कभी सूक्ष्म वतन की, कभी मूल वतन की, कभी भक्तों के पास चले जाओ, कभी पूर्वज बन करके पूरे वृक्ष को लाइट दो, सर्च लाइट दो। तो ये हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है जिसमें मन बुद्धि इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर मन हमारा कंट्रोल में है, एक शुद्ध संकल्पों में रहता है, बुद्धि ठीक निर्णय देती है, जजमेंट देती है, राय देती है, ये करो ये न करो, तो मन और बुद्धि के कंट्रोल से संस्कार अच्छे बनते हैं, क्यों कर्म अच्छे होने लगते हैं, और कर्म अच्छे होते हैं तो ये कर्म इंद्रियां स्वतः शुद्ध और पवित्र बन जाती है। तो हम सब आत्मा का पाठ पक्का करें, लेकिन एक बार अपने आठों कर्मचारियों को सामने इमर्ज करके उनसे हाल चाल पूछें, दरबार लगाएं, तो सहज ही हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। ओके, ओम शांति। ये सिग्नल आ गए हैं, ओम शांति।
आत्मदर्शन स्वयं कदर्शन आत्म ज्योति जगाले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पद पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा, भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मज्योति जगा ले, बुझी हुई जगात कर ज्योति, स्वराज फिर पाले आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन।